ਨੀ ਤਾਈ ਗੌਰ ਹਰੀ ਬੋ ਹਰੀ ਬੋ ਹਰੀ ਬੋ ਹਰੀ ਬੋ ਨੀ ਤਾਈ ਗੌਰ ਹਰੀ ਬੋ ਜਾਇ ਜਾਇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਤ ਗੌਰ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦੇ ജാമനത്തെല്ലാ പ്രവിഷ്ണു വിഷ്ണു പാദ പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യവാഹിന്ദ്രമദനാരവിന്ദ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ മഹാരാജ് കി ജയ് അനന്ത കോട്ടി വൈഷ്ണവിന്ദ് കി ജഗനന്ദരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ് നിതായ് ഗൗഡ ഹരി പ്രമാനന്ദേ സമാഗത ഭക്തവിന്ദ് കി ജയ് സമാഗത ഭക്തവിന്ദ് കി ജയ് സമാഗത ഭക്തവിന്ദ് കി ജയ് ജയ് ശ്രീ ശ്രീ ഗുരു ഓർ ഗൗരാംഗ മഹാപ്രഭു കീ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാരായണം നമസ്തുത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം ജയം മുദീരേ നഷ്ടപ്രായേഷ നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ദ 8 അധ്യായ 24 ഓർ ക്രമ കേ അനുസാര ആജ് 58 ശ്ലോക ഹേ അഭി തോ 54 55 56 57 58 ഓർ 59 ക്യോകി താത്പര്യ നഹീ ഹേ 59 മേ ഓർ 7 बोर्ड पे लिखा है 58 श्लोक आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे सा तू शतव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुत विष्णु प्रसादात कल्पे अस्मिन् आशीत वैवस्वतो മനോ ചതുസത്യവ്രതോ രാജാ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സംയുക്ത ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സംയുക്ത വിഷ്ണു പ്രസാദ കൽപേ അസ്മിൻ ആസിദ് വൈവസ്തുതോ മനോ ശതു സത്യവതോ രാജാ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സംയുക്ത വിഷ്ണു പ്രസാദാത് കൽപേ അസ്മിൻ ആസിദ് വൈവസ്വതോ മനു ശതു സത്യവതോ രാജാ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സംയുക്ത വിഷ്ണു പ്രസാദാത് കൽപേ അസ്മിൻ ആസിദ് വൈവസ്വതോ മനു ഷദ് സത്യവതോ രാജ माता जी वह तो निसंदेह सत्यवत सत्यवत राजा को ज्ञान विज्ञान संयुत ज्ञान तथा उनके व्यावहारिक उपयोग से अभिज्ञ विष्णु भगवान विष्णु की सदा कृपा से कल्पेस्मिन इस कल्प में वैवस्वत मनु के राज्य में आसीत हो गया वैवस्वत मनु हनुमान तात्पर्य श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया और इस काल में उसने अब सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर का निर्णय है कि सत्यव्रत चाक्षुष मनवंतर में प्रकट हुआ। चाक्षुष मनवंतर के बाद वैवस्वत मनु का काल प्रारंभ होता है। भगवत कृपा से सत्यव्रत को द्वितीय मत्स्यावतार से उपदेश प्राप्त हुआ और इस तरह उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। अमज्ञानतिमिदन्त ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामजम् ददाते शदन्ति वन्दैहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवस्नवन्त श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विदन्तम् सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिवशाखन्वित मुखं कदौति वाचां पङ्गुमलङ्गयत गिरिं यत्कृपा ಪಾದಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮ ಜಯತಂ ಸುರತಪಂಗೌ ಮಮ ಮಂದಮದೇಗತಿ ಮತ್ಸರ್ವಸ್ವಪದಾಂ ಮೌಜೌ ಶ್ರೀರಾಧಾಮದನಮು ವಂಶಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಸ್ತ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವತ್ತ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಷಾದಿ ಶ್ರೀ ಗೌರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ನಮಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯನಾಮನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿಧಿ ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪ್ರಸ್ಯಾತ ದೇಶ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತು ಸತ್ಯವತ್ತು ರಾಜ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಕಲ್ಪೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಆಶ್ರಿತ ವೈವಸ್ವತೋ ಮನು ಜೆ ಆಗ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಅದ್ಭುತ ಅವತಾರ ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ ಚರಿತ್ರ ಆಗ ಸುನ್ ರೇ ಶ್ರೀ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಕಿ ಕೃಪಾ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ನಾನಾ ಅವತಾರೋ ಕಾ ಚರಿತ್ರ ಹಮೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸುನ್ನೆ ಕೋ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಜಿಸ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಕಾ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಫಲ ಯಾ ಅಮೋಘ ಫಲ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಮೇ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋನಾ ಹೈ ಇಸ್ಕಾ ತೊ ಯೇ ಭೀ ನಹೀ ಹೈ ಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಇಸ್ಸೆ ಭಿನ್ನ ಕುಛ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನಾ ಹೈ ತೊ ವೋ ದೂಸರೆ ಕಿಸಿ ಕಾ ಆಶ್ರಯ ಕರೇ ಯಾ ದೇವಿ ದೇವತಾಓ ಕೆ ಚರಿತ್ರ ಕೋ ಗಾಯ ಐಸಾ ಬಾತ್ ನಹೀ ಹೈ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಹೀ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಔರ್ ಮೋಕ್ಷ ಇನ್ ಚಾರೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕೆ ಮಹಾನ್ ದಾತಾ ಹೈ ಇಸ್ಲೇ ಕಿಸಿ ಭೀ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಚರಿತ್ರ ಶ್ರವಣ ರೂಪಿ ಭಕ್ತಿ ಅಗರ್ ಕೋಈ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಜೈಸೆ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೊ ಉನ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿ ಇಚ್ಛಿತ ವಸ್ತು ಉನ್ನೆ ಮಿಲ್ ಜಾತಿ ಹೈ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಕಿಂತು ಇನ್ ಸಾರಿ ವಸ್ತುಯೇ ಜಿಸ್ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಜೀವಿಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಹೈ उन समस्त वस्तुओं को प्राप्त करके भी जीव को वो अदम्य सुख की लालसा बूझती नहीं है, वो अदम्य सुख की लालसा निवृत्त नहीं होती है। जब तक परमार्थ बुद्ध उन परम तत्व श्री भगवान का जीव साक्षात्कार नहीं कर लेता है, उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनके शब्द, उनके रूप गुण लीला का जब तक व्यक्ति स्पर्श नहीं कर पाता है या उनसे मिलने वाला जो सुख होता है वो सुख ही परमार्थ बुद्ध वस्तु जीव के लिए है, या तभी तक जीव की उन अदम्य सुख की लालसा पूर्ण नहीं होती है जब तक वो भगवान का अनुभव अपनी इंद्रियों से न कर ले। और इंद्रियों में जो एक प्रबल लालसा होती है, सुख इच्छा होती है, वो सुख इच्छा वस्तु तो कोई भौतिक सुख की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान के अभाव में उनके रूप गुण लीला या उनके नाम का आस्वादन के अभाव में व्यक्ति इन जगत के शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जिनसे कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि एक छटपटाहट उनके हृदय में निर्माण होती है, ऐसी छटपटाहट में जीव उलझा हुआ रहता है। तो वास्तव में हमारी स्थिति अभी इस वक्त है कि इंद्रिय भोग की लालसा में हम लोग दिन रात जलते रहते हैं, और उन जलन का एकमात्र कारण है भगवत प्रेम का अभाव, भगवत दर्शन का अभाव, उनके ज्ञान का अभाव। तो सुखदेव गोस्वामी बात इस श्लोक में कहते हैं कि सत्व सत्यवतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुक्त। तो कहते हैं इस प्रकार वह सत्यवत महाराज भगवान विष्णु जो लीला से मत्स्य बने हुए थे, तो उनकी कृपा से वो ज्ञान और विज्ञान से युक्त हो गए। ज्ञान कहते हैं वस्तु को उनकी मूल स्थिति में समझना, और विज्ञान कहते हैं उनको आचरण में लेना, उनको व्यवहार में लेना अथवा उनकी अनुभूति करना, उनको विज्ञान बोलते हैं। साक्षात अनुभव करना इनको विज्ञान बोलते हैं। तुम दोनों से भगवान विष्णु की कृपा से वो अवगत हो गए और कहते हैं कि अस्मिन कल्पे वैवस्तो मनु आशित। उन विष्णु की कृपा से इस कल्प में वे वैवस्वत साध्य देव के रूप में, या जो साध्य देव भगवान विवस्वान के पुत्र सूर्यदेव के पुत्र है, वही इस सत्यवत मनु के रूप में इसी कल्प में मनु महाराज के रूप में भगवान ने स्थापित किया, ये कहते। लेकिन श्रील प्रभुपाद महाराज जैसे अपने तात्पर्य में बताते हैं, कृष्णा चक्री ठाकुर कहते हैं ये तो चाक्षुष मन्वंतर की घटना थी, और वो घटना कैसी थी बोलते उन सत्वत महाराज के ऊपर कृपा की थी, उन्होंने चाक्षुष मन्वंतर में सत्वत महाराज की इच्छा होने से उन्होंने एक ऐसा प्रलय निर्माण किया था शिव भगवान ने उनके सामने, जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषि के सामने भगवान ने एक प्रलय प्रस्तुत किया था। जब प्रलय के दर्शन की इच्छा किसी की, किसी के जीव के हृदय में, खास करके जिन्होंने भगवत प्राप्ति किया है या भगवान के जो अत्यंत प्रिय जन है उनकी इच्छा पर भगवान कभी कभी उनको ये अपनी माया के द्वारा जो विध्वंस होता है, जिनको प्रलय बोलते हैं, उन प्रलय का दर्शन भगवान कराते रहते हैं। ऐसी कई घटनाएं शास्त्र में है, केवल दो ही घटना नहीं है, अनेक बार भगवान अपने भक्तों के प्रति उनकी इच्छा पूर्ति के लिए इस प्रकार का प्रलय दर्शन कराते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि श्रीमत्स्य देवस्य द्वय अवतारम पुनर्दर्शयति अति अति द्वाभ्याम, जीव गोस्वामी बात का कहना है। जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि इसलिए ये जो दो अवतार भगवान के द्वारा लिया गया है मत्स्य के रूप में, वो भिन्न भिन्न कल्प में लिया गया है। जैसे ही एक तो उन चाक्षुष मन्वंतर के बीच में अपने भक्त सत्यव्रत को भगवान ने इन मत्स्य अवतार के रूप में दर्शन दिया था। चक्रवीर ठाकुर यहां कहते हैं कि मत्स्य अवतार द्वयस्त, दो मत्स्य अवतार है, समय द्वयम, उनका भिन्न भिन्न समय है, दो समय में भिन्न भिन्न प्रकट हुए थे, और प्रयोजन द्वयम, और उन दोनों का भिन्न भिन्न प्रयोजन था। एक ही प्रयोजन से श्री भगवान एक अवतार नहीं लेते हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं तो अनेक प्रयोजन सिद्ध करते हैं या अनेक प्रयोजन उनके द्वारा सिद्ध होते हैं। तो कहते हैं ये प्रयोजन भी भिन्न भिन्न था। उसका अर्थ ये है कि यहां जो सुखदेव गोस्वामी बात बता रहे हैं एक कथा को, वो दोनों अवतार को मिक्स करके बता रहे हैं। भगवान का चरित्र उन दोनों चरित्र को एक जैसे बताते हैं, और इसलिए चक्रवीर ठाकुर कहते हैं कि अतीत प्रलय से अपाय स्वयंभू मन्वंतरा आरंभे इति अर्थ। जैसे आगे के श्लोक में यह बताया गया है इनकी शुरुआत में ही ये चीज बताया गया है कि भगवान ने जब ये प्रलयकालीन रात्रि ब्रह्मा का पूरा हुआ अतीत प्रलयाय उत्थिताय सवेद से हत्वा अश्रम हयग्रीमुम वेदान प्रत्याहरण हरि ही। इसके आगे के श्लोक में बताए अतीत प्रलय प्रलयाय कहते हैं इन प्रलय को, प्रलय का जब अत्यय हुआ वो पूर्ण हुआ तो उसी समय कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी जब नींद से उठते हैं उत्थिताय सवेद से, वेदस कहते ब्रह्मा को, विधि को, श्री ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी जब उठते हैं तो उठे जब ब्रह्मा जी तो हत्वा असुरम हयग्रीम वेदान प्रत्याहरत हरि, तो उन हयग्रीव असुर को मार करके उनके पास से वेद ले करके शिव ब्रह्मा जी को वापस किया, ये एक प्रयोजन है। और अपने भक्त पर कृपा करना ये एक भिन्न प्रयोजन, ये प्रयोजन द्वय। ठाकुर जो कहना चाहते हैं इस बात को, इन दो प्रयोजन के लिए एक भिन्न भिन्न अवतार, यद्यपि केवल दो ही प्रयोजन नहीं था, उसका एक प्रधान प्रयोजन होता है कि जीव श्री भगवान के इन अद्भुत अवतार की लीला का श्रवण करे। जो ऐश्वर्यमय बातें सुनना चाहता है या आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं, जीव का एक स्वभाव है इस संसार में कि वो श्रवण करना चाहता है। तो भगवान उन 400,000 माइल का मत्स्य बनकर के अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य किए थे, ये प्रलय कालीन जल में विचरण किए थे। एक अद्भुत बात है, इन प्रलय कालीन जल में कोई जिंदा नहीं रहता है, लेकिन भगवान ने अपने उन प्रिय भक्त को जिला करके नहीं, वो रात्रि पर्यंत विहार करते हुए उनको बचा लिया, 70 शिव को और साथ में सतपत मुनि को, और अपनी सिंह पर नाव को बांध करके वो पूरी रात्रि पर्यंत उन्होंने विचरण किया। 4,32,00,000,000 साल तक भगवान ने विचरण किया। ये अद्भुत कार्य है जो अशक्य जैसी वस्तु है, तो उसी को तो भगवत कार्य बोलते हैं। जाति मानवीय कार्य, ये कोई भी मनुष्य या किसी से ऐसी लीलाएं संपन्न, ऐसा कार्य संपन्न नहीं होता, इसलिए उनको लीला बोलते हैं। और हम लोग ऐश्वर्य के पीछे लगे रहते हैं, पागल है, कोई जादू टोना दिखाते हैं, कोई क्या दिखाते हैं, किसी प्रकार का दुनिया में जो ऐश्वर्य है उनसे हमारा चित्त आकृष्ट रहता है। तो ऐसे चित्त वाले व्यक्ति को आकृष्ट करना लीला अवतार का प्रयोजन है। भगवान का जो लीला अवतार है उसमें जो अति मानवीय कार्य दर्शाए जाते हैं, तो ऐसे जीव जो ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट है, भगवान बोल रहे हैं सर्व ऐश्वर्य का स्वामी मैं हूं, मुझे देखो। तो मुझे देखने से दो काम होगा, क्या दो काम होगा? एक तो जो तुम्हारी ये जो छटपटाहट है इंद्रियों की, ये भोगों के प्रति जो इंद्रिया उछल कूद कर रही है भोगों में, वो शांत हो जाएगी, तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा उन लीलाकर्ताओं के द्वारा। और दूसरा, तुम्हारा जो वास्तविक प्रयोजन है वो तो मुझसे सिद्ध होगा, वो भी सिद्ध हो जाएगा। अर्थात जीव उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, तो सनई सनई वो अपनी आसक्ति को भगवान के प्रति मोड़ता है, या स्वाभाविक भगवान उनके चित्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए उनका नाम, एक नाम हरि, प्रेम दिया हरे मन, चेतन चिंता में जैसे बताते हैं। तो भगवान उन जीव के चित्त को जो हरि कथा श्रवण में लगा हुआ है, उनके चित्त को सनय सनय अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, इन लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए। इसलिए भगवान इन लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, और उन लीलाओं को शास्त्र में बुद्धिमान महान महान जो विद्वान कवि लोग हैं, शिव ब्रह्मा नारद सुखदेव गोस्वामी पाद, तो उनके द्वारा इन लीला चर्चाओं को गाया जाता है। तो मुख्य प्रयोजन कुंती महारानी के हिसाब से यही है भगवान के अवतार का प्रयोजन, कि जीव जो अपने उन भोगों की लालसा के कारण कर्म पर कर्म करता रहता है, और अपने ही कर्म से अज्ञानवश बंधे हुए जीव जब भगवान के द्वारा की गई जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का श्रवण करते हैं तो उन श्रवण से जीव का निस्तार होता है। तो भगवान का लीला अवतार का प्रयोजन, लेकिन उनके साथ साथ भगवान ये भी दर्शाना चाहते हैं कि जैसे मेरे अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति को मैं प्रत्यक्ष दर्शन भी देता हूं, उनको भी भगवान दर्शा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भजन करने वाला व्यक्ति केवल भगवान दिखाई नहीं देते हैं, इधर कृष्ण कृष्ण करते हैं और कृष्ण कहीं दिखाई नहीं देते, मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो हमारा डाउट होता है हृदय में भजन के समय, उन डाउट भी क्लियर होता है। जैसे सत्यव्रत मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन देकर के भगवान ने ये साबित किया कि तुम भी बेटा सत्यव्रत की तरह उत्कंठा से भजन करो तो तुम भी मेरा दर्शन कर सकते हो। पर कंडीशन ये है कि मैं अधोक्षज हूं, इसलिए तुम इसी प्राकृत दृष्टि से या प्राकृत मन के द्वारा, प्राकृत बुद्धि के द्वारा मुझे समझ नहीं सकते, लेकिन इसी प्राकृत इंद्रियों के द्वारा मेरी कथाओं को ग्रहण कर सकते हैं। सुविधा मैंने दिया है। भगवान को भले कोई प्रत्यक्ष दर्शन न कर सके, लेकिन इन प्राकृत इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की लीला को श्रवण करते कर सकते हैं, अर्चा विग्रह का दर्शन कर सकते हैं, ये तो कार्य कर सकते हैं। तो इसी से हमारी इंद्रियां निर्मल होगी, चित्त शुद्ध होगा और उन शुद्ध चित्त में, शुद्ध चित्त से जब भगवान के द्वारा कृपा करके ये ज्ञान दिया जाएगा जैसे यहां सत्यव्रत मुनि को देते हैं, तब सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे कभी लोग गाते हैं कि ज्ञान विज्ञान संयुक्तम विष्णु प्रसादात, भगवान की कृपा से श्री सत्यव्रत मुनि ज्ञान और विज्ञान से युक्त हो गए। उन्होंने जानने योग्य तत्व परमार्थभूत वस्तु श्री भगवान को जान लिया, वो कृतकृत हो गए। कहने का अर्थ यह है, तो ठीक उसी प्रकार हम भी अगर इन लीला कथाओं का श्रवण इत्यादि करते हैं तो भगवान का कृपा प्रसाद हमको भी मिल जाएगा। हम देखते हैं सत्यव्रत मुनि के, मुनि जब भजन साधन करते थे उनके सामने भगवान उपस्थित नहीं थे, और कोई भी भक्त जब वो साधन में देते थे ध्रुव महाराज वो नाद मुनि को मिले तो उनकी जिज्ञासा, उनकी जिज्ञासा हुई थी कि मैं भगवत प्राप्ति करूंगा, ठीक है उस टाइम भगवान नहीं थे, लेकिन ध्रुव महाराज ने जैसे बाद में भगवान को प्राप्त कर लिया, जिस नाद मुनि ने जो जो बताया था, खास करके उन भगवान से अभिन्न उनका नाम जप करने के लिए बोला गया था, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो जप करते हुए, पर एक बात है कि उनमें निष्ठा कितनी थी उनके ऊपर निर्भर करता है, भगवत प्राप्ति कब होगा ये तो हमारे पर निर्भर करता है। जैसे ध्रुव महाराज इतनी उत्कंठित थे भगवान के मिलन के लिए कि केवल वो दूसरे तीसरे दिन जल पी करके लगे हुए थे, और वो दो तीन बार खा करके लगते हैं ना, दो बार प्रसाद, कभी कभी तीन बार भी ले लेते हैं मौका पड़ने पर। तो उत्कंठा हरिभजन से ज्यादा उत्कंठा इसी में दिखाई पड़ती है, तो उत्कंठा मालूम पड़ जाती है ना, या हरि चर्चा करने से इतर चर्चा हम ज्यादा कर लेते हैं, आधा घंटा एक घंटा भागवत की चर्चा करते हैं, ठीक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी बहुत सारा घंटा इतर हमारा चित्त रहता है। पर ये लोग का आकृष्ट का, इनका आकृष्ट का देखिए भगवान के प्रति कितना आकर्षित है उनका मन, वो शीघ्राति शीघ्र प्राप्त करना चाहते ध्रुव महाराज। तो इसी प्रकार उत्कंठित भाव से महाराज सत्यव्रत भजन करते थे। इसका अर्थ यही है, और अन्यथा भगवान दर्शन नहीं देते। कोई भी अवतारों मत्स्य रूप में हो, कोई भी अवतार होता है भगवान का, जो अपने भक्त को दर्शन देने के लिए जो अवतार होता है, वो उन भक्त की उत्कंठा के कारण ही अवतार होता है। या कभी कभी भगवान अपने उन अनन्य भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए वो बगैर प्रार्थना किए भी अवतरित हो जाते हैं, ऐसा नहीं सिद्धांत बन जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज, लेकिन प्रहलाद का भी मन आप देखिए कितना निष्ठा था भक्ति में। उनके पिता मारने के लिए तूले थे, लेकिन उनका निष्ठा देखे बदला नहीं मन। वो गलती से भी ये नहीं बोले कि ठीक है पिताजी आपका मन रखने के लिए मैं भजन छोड़ देता हूं। उनका पिता भजन छोड़ाना चाहते थे, उनके शत्रु वो अपने को विष्णु का शत्रु मानते थे, तो वो मेरा शत्रु का भजन करता है कि मेरा बेटा, ये तो उचित नहीं है। वो भुलाना चाहता था, और एक बार भी प्रहलाद महाराज कह देते थे ठीक है पिताजी, बहुत खुश हो जाते थे ना, क्योंकि उनका पुत्र था। लेकिन देखिए प्रहलाद जी का निष्ठा, तो उन निष्ठा के कारण बगैर इच्छा किए, ये प्रहलाद महाराज की अद्भुत निष्ठा का कारण है। भक्ति के प्रति भगवान रह नहीं पाते, जब भक्ति के प्रति इतना निष्ठा प्रदर्शित होती है किसी की, तब भगवान कहां रह पाएंगे, वो प्रकट हो गए। कोई कहेंगे कि नहीं ना, भगवान तो रक्षण करने के लिए प्रहलाद महाराज के प्रकट हुए, वस्तु तो ये बात नहीं है, वो एक सेकंड में मार सकते थे। वो बिना प्रकटित हुए भगवान कोई भी व्यक्ति के जीव को एक स्विच की तरह, जैसे हम लोग ऑफ करते हैं ना एक अर लाइट, ऐसे भगवान ऑफ कर सकते हैं किसी को खटाक से। जरूरत नहीं है, वो इतना महान दैत्य था इसे मारने के लिए आना पड़ा भगवान। ये एक भगवान की लीला वैचित्री है। बाकी स्विच उनके हाथ में है, कब किसको ऑफ करना है खटाक से, वो कर सकते थे। लेकिन भक्त वत्सलता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि अगर कोई प्रेम करता है भगवान को, पर संसारिक पदार्थों से कहीं ज्यादा प्रेम जब भगवान में होता है तब तो लीला कथा का प्रयोजन क्या है, चित्त शुद्धि। अच्छा, चित्त शुद्धि होने पर जीव रह नहीं पाएगा। जो हरि कथा के बल से जिनका चित्त शुद्ध हुआ है, वो व्यक्ति भगवान को प्रेम किए बगैर रह नहीं सकता है, क्योंकि वो तो प्रेमी है ही, स्वभाव है उनका प्रेम करना। और हरिकथा क्या करती है, इतर वैराग्य उत्पन्न करती है। उनका एक काम यही है, यह सुनवतो अपेति अरति वितृष्णा अपेति। ये अपेति शब्द दोनों जगह लगता है। भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए और रति चली जाती है, किसमें, कृष्ण कथा में, और रति जो विषयों में है, विविधा तृष्णा, ये भी तृष्णा, वो भी अपेति, वो भी भाग जाती है। ये हरि कथा दोनों कार्य एक साथ में करती है, एक साथ में दो कार्य करती है। वो विविध विषयों की जो तृष्णा हमारे हृदय में है, वो तृष्णा चले जाएगी तो जब विषयों में प्रेम चला जाएगा, वो प्रेम रहेगा कहां, कहां रहेगा है? वो भगवान में बहना चालू करेगा ना है? वो सीधा जिनका वो श्रवण कीर्तन इत्यादि जीव करता रहता है, उनमें वो लगना प्रारंभ करेगा। अभी जो हमारा परिश्रम हो रहा है, ये खूब उठ उठ करके कथा सुनना, या फिर जप करना खड़ा हो करके, ये जबरदस्ती वाला मामला है ना, वो केवल वो विविधा तृष्णा के कारण है, वितृष्णा के कारण है। थोड़ा सा चित्त शुद्धि होने पर ये कठिनाई नहीं लगेगा, तब उनको आनंद आने लगेगा। क्यों? न चित्त शुद्धि पर निर्भर करता है। उन मल से जैसे चित्त मुक्त हो जाता है, कुछ मुक्त होता है, तभी भी उतनी मात्रा में हरि नाम में हरि कथा में व्यक्ति को आनंद आने लगता है, सुख आने लगता है, सुख मिलने लगता है। ये बहुत परफेक्ट सिद्धांत है। तब भगवान मत्स्य ने यहां दो प्रयोजन से भिन्न भिन्न दो काल में अवतार ग्रहण किया। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तो वो कहते हैं आगे कि तू भिन्नो उपक्रमे, यहां जो तू शब्द है स तू, इस श्लोक के तात्पर्य में वो कहते हैं तू मन लेकिन स व सत्यवत राजा ज्ञान विज्ञान से युक्त हो गए, लेकिन विष्णु प्रसादात अन्न काले। देखिए इसमें लिखा है कि तू भिन्न उपक्रम में, एक दूसरे उपक्रम में ये तुकार लगा है, इसमें ये तुकार लगा है। सत्यवत सत्यवतस्तु चाक्षुष मनमंत्र मध्य इति शेषो बोध्य, ये तुकार से ऐसा बोध होता है। कहते चाक्षुष मनवंतर के ये लेकिन क्यों रखते थे, ये लेकिन इसलिए रखा गया है कि उन चाक्षुष मनवंतर मध्य में जो अपने उन भक्त को दर्शन दिया था सत्यवत महाराज को मत्स्य रूप में, और उन्होंने जिस प्रलय का अनुभव किया था वो प्रलय केवल सत्यवत महाराज के लिए था, ये कहने का अर्थ है। लेकिन यहां सुखदेव गोस्वामी पाद सात दिन के भीतर बहुत सारी लीलाओं को सुनाना था, तो भिन्न भिन्न नहीं बताते हुए जब मत्स्य लीला आया तो दोनों अवतार का जॉइंट बता करके निकल गए, और दोनों प्रयोजन भिन्न भिन्न था, उन दोनों प्रयोजन को एक करके, और दोनों समय भिन्न भिन्न था, उनको एक समय वर्णन करते हुए निकल गए। इससे लिए कथाकार की है? तो कहते चाक्षुषो उद्धि संप्लव है अपद वैवस्वतम मनु इति वाक्य अनुरोधात। और दूसरा मालूम क्या पता है, तो बोलते हैं कहते हैं कि उन चाक्षुष मनवंतर के बाद में जब प्रलय होती है तो उस प्रलय बाद में ये वैवस्वत मनु को स्थापित करते हैं, ये एक भिन्न अवतार में करते हैं, ये ब्रह्मा जी के मुख से जो वेद गिर गए थे वो चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब ब्रह्मा जी सोने के लिए जा रहे थे उस टाइम की घटना थी, और उसके बीच में एक बार अवतार हो गया मत्स्य का। फिर इन दोनों कथाओं को एक करके बता रहे हैं, बहुत सुंदर यहां विवेचन दिया है। चाक्षुषोत उद्भव उद्धित संप्लव है, जब वो मनवंतर पूरा हुआ और उस टाइम जब प्रलय कालीन जल था, तो कहते हैं उसी में उसके बाद में ये जो ब्रह्मा जी जगे, तब कहते हैं ये मनु महाराज वर्तमान में जो काल चल रहा है वैवस मनु का काल है, तो ये वैवस्वत मनु को मत्स्य अवतार ने स्थापित, शायद इसीलिए भक्त लोग उनको पहले अवतार में गाए जयदेव गोस्वामी पाद प्रलय पयो दी जले दितवान शिवे नम, हो सकता है। लेकिन अभी 28वीं चतुर्युगी चलती है, 14 मनु का काल है, ऐसा कहते हैं तो एक मनु का काल इसको समझना पड़ेगा भाई। अब बस 71 चतुर्युग एक मनु का काल होता है ना, हाँ 71 चतुर्युग होता है, तो 28वीं चतुर्युग की चलती है, तो ये जो ब्रह्मा जी का दिन बीता दिन शुरू हुआ तो इस टाइम की ये घटना है कि वैवस्वत महाराज को स्थापित किया ये मनु के रूप में एकत्र वाक्य अनुरोधात विष्णुर मत्स्य रूपस्य प्रसादात ज्ञान विज्ञान संयुक्तम इति चाक्षुषी यम मत्स्य अवतारस्य प्रयोजनम उक्तम। ये दो अवतार दो प्रयोजन से हुआ था उनको एक में युक्त करके बोल रहे हैं। हाँ ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं बराबर 71 युग तो 28 में चतुर्युगी चालू है तो ये इसी चतुर्युगी के प्रारंभ में या इसी चतुर्युगी नहीं इसी कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं उनके प्रारंभ में मनु महाराज को स्थापित किया था भगवान मत्स्यदेव के द्वारा और उनको अपने ज्ञान विज्ञान से युक्त किया था। और वास्तव में दोनों साथ में वर्णन है बड़ा अवतार तो सुखदेव गोस्वामी बात इसी कथा के उपसंहार की ओर बढ़ते हुए ये सारी बात बोल रहे हैं। जब उपसंहार होता है किसी कथा का तो उनकी सार वस्तु को धीरे धीरे उस सार वस्तु तक जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं शिशुकुवाच चार श्लोक पीछे से अगर हम चले तो कहती इति उक्तवंतम निपतिम भगवान आदि पुरुष मत्स्य रूपी महा अम्बोधो विहिरन तत्व अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी पद कहते हैं कि इसी प्रकार जब अपने भक्तों के द्वारा प्रार्थना सुनी सतवत मुनि ने प्रार्थना की आगे उन प्रार्थना में वो कहते हैं कहते हैं कि छिंदी अर्थ दीपेर भगवान वचो भी ग्रंथी दध्यान विवृणु समोक। उनकी अंतिम प्रार्थना के प्रार्थना का अंतिम श्लोक में कहते हैं कि हे भगवान आप सारे देवताओं के आराध्य पूजनीय हैं और मैं कहां दूसरा गुरु खोजने जाऊंगा प्रपद्य ईशम प्रतिबोधनाय इसलिए मैं डायरेक्ट आपका शरण जा रहा हूं और आप मुझे ज्ञान दीजिए। उनकी डिमांड थी प्रतिबोधनाय करते हो है ज्ञान प्रतिबोध एक बोध जो होता है ये संसार का बोध है इसलिए प्रतिबोध क्या है न भगवत विज्ञान प्रतिबोध है तो प्रतिबोधनाय ईशम प्रपद्य मैं आपकी शरण में हूं और मुझे ज्ञान दीजिए और आपकी परमार्थभूत वाणी से आप मेरे हृदय की ग्रंथि को छेद दीजिए। ये जो दुनियावी ज्ञान हो रहा है वास्तव में अज्ञान है उन अज्ञान की ग्रंथि को आप उन सुंदर उक्ति के द्वारा परमार्थभूत उक्ति के द्वारा उनको छेद ग्रंथि हृदय छेद दीजिए और विवृणु स्वमोक और आप अपने उन बपू को मेरे सामने प्रकटित कीजिए मुझे दर्शन दीजिए। तो इति उक्तवंतम निपतिम सुखदेव गोस्वामी बात कहते जब राजर्षि ने इस प्रकार कहा तो भगवान आदि पुरुष उन आदि पुरुष भगवान मत्स्य रूपी महा अम्बोधो विहिरन उनकी जो इच्छा थी प्रलयकालीन जन्म में विहार करने की उन इच्छा पूर्ति के लिए वो प्रकटित हुए और प्रकटित होकर के उनमें विहार करते हुए उन्होंने बोलना प्रारंभ किया और क्या बोले पुराण समितम दिव्याम सांख्य योग क्रियावतीम सत्यवत्स राजर्षि आत्मगुज्यम अशिष्ट। कहते हैं कि उन आदि पुरुष भगवान ने उन दिव्य ज्ञान उन विचरण करते हुए दिया। इसमें एक श्लोक में यह भी कहा गया है कि उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकटित हुआ। देखिए दो प्रयोजन भिन्न भिन्न है इसमें भी मालूम पड़ता है दो बात कही जाए इसमें श्रवण किया ये बोलते हैं आगे के श्लोक में हम जाएंगे हम देखेंगे श्रवण किया। लेकिन एक श्लोक में यह भी बोला गया है कि उनके हृदय में भगवान का दिव्य ज्ञान प्रकटित हुआ। दो बात है वो प्रकटित होने वाला वही काल है जो अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बीच में चाक्षुष मनन तद में जब घटना हुई उसका बात बता रहे। और यहां कहते हैं कि उन दिव्य ज्ञान जो ज्ञान भक्ति योग और कर्म योग उनसे समन्वित कि जो पुराण संहिता जिनको मत्स्य पुराण बोलते हैं, उन दिव्य संहिता, उन सत्यव्रत महाराज को जो कि भगवान के विषय में अत्यंत गूढ़ रहस्यपूर्ण ज्ञान जिसमें है, तो वो ज्ञान महाराज को दिया। देखिए अब लिखते अशोषित ऋषि भी श्रवण किया, यहां श्रवण किया लिखा था, उसका हाथ विचरण करते हुए उन प्रलयकालीन जल में कहां नौका चल रही थी आप समझ रहे हैं, और प्रलयकालीन हवा चल रही थी, वो हवा ही कान फोड़ देने वाली होती है, साई साई करके बहती है और फिर प्रलयकालीन जल उनके साथ उड़ता है और जो एक घुघवाट होता है समुद्र का और उसमें भगवान बिना माइक और दे रहे हैं और ये लोग श्रवण कर रहे हैं नौका में बैठे हुए, ये है भगवत तत्व। वो नौका में बैठे हुए दूर सुदूर वासुकी नाग से बंधी हुई थी और नौका, और वासुकी नाग बहुत लंबा है, उनकी लंबाई चौड़ाई लिखा गया, वो बंदी हुई थी, वो वहां श्रवण कर रहे लिखा है। अशोषित ऋषि भी साकम आत्म तत्व असंशयम, और बिना डाउट के एकदम क्लियर सुन रहे थे, कोई डाउट नहीं, वो बिना संशय ऋषि के साथ महाराज सुन रहे थे। नाव्यमासीनो भगवत्ता, और कहां पर आसीन थे वो लोग, नौका में, और भगवान बोल रहे थे, और मत्स्य का शरीर कितना बड़ा था, 400,000 योजन का था, उनका मुख कहां होगा, नौका कहां होगी, हम लोग समझ सकते हैं। आशित प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम, उन अपने उन सनातन ब्रह्म की महिमा को भगवान मत्स्य देव ने इन पुराण संहिता के रूप में, ये जो मत्स्य पुराण के रूप में भगवान ने उपदेश, तो मत्स्य पुराण पूरा ये प्रलयकालीन जल में विवेचन हुआ था भगवान के द्वारा, ये नहीं बैठ करके लिखा था, यह लोग कैसा भी बैठ करके लिखते 10 गलती लिखते हैं, 50 गलती एक लेटर में 10-50 गलती दिखाई पड़ती है ना। तो ये पुराण संहिता जो सुनी गई, बाद में लिपिबद्ध किया वेदव्यास महाराज ने उनको, तो ये मत्स्य पुराण है जिसमें सनातन ब्रह्म का उपदेश है, या भगवान की उन ब्रह्म पहलू का वर्णन, परमात्म पहलू का वर्णन जिनमें ज्यादा है। अब मत्स्य पुराण में आगे जाएंगे आप तो पाएंगे वहां भक्ति का सुनिश्चित वर्णन है, लेकिन सांख्ययोग इत्यादि का ज्यादा वर्णन करते हुए परमात्मा कैसे इस जगत को कार्यान्वित करते हैं वो सारा बात उसमें लिखा गया है, उन परमात्म तत्व का वर्णन, आत्म तत्व का वर्णन। उन सनातन का ये अर्थ ये है कि भगवान जब भी लीलाएं करते हैं, खास करके इस जगत को धारण करने की, वो लीला एक जैसी है हमेशा, सेम लीला, परमात्मा के रूप में, तीन परमात्मा के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं इस जगत को प्रकटित करने के लिए, उनका विध्वंस, उनका पालन करने के लिए, और नाना अवतार जो लेते हैं वो एक जैसा है। इसलिए उसी सनातन जो ब्रह्म तत्व है, अब वो 13वें अध्याय भगवद्गीता में आप जाएंगे तो वहां उन सनातन ब्रह्म के विषय का विचार है, वो कैसे ब्रह्म और परमात्मा एक है उनको उसी श्लोकों से मालूम पड़ता है, और उसी मत्स्य पुराण में इसका विवेचन पूरा मिलता है, इस जगत के साथ परमात्मा कैसे अविष्ट होकर के किस प्रकार अणु अणु में व्याप्त रहते हैं और इस जगत को कैसे संचालित करते हैं, ये सब कार्य वहां पर लिखा गया, भगवान की इन लीला को लिखा गया। तो कहते हैं अतित प्रलयाय उत्थिताय सवेद से, और एक दूसरे प्रयोजन को भी बता रहे, हत्वा अश्रुम हयग्रिम वेदान प्रत्याहर हरि। तो भगवान ने उन जो वेद चुरा करके लेके गया था रात्रि में, उसका कोई जरूरत नहीं था, इसलिए भगवान ने मारा भी नहीं था, जब रात्रि पूरा हुआ तब असुर को मारा, भगवान ने तो देखा था, जब ब्रह्मा सोने जा रहे थे उसी समय भगवान ने देख लिया था कि ये असुर हयग्रीव वेद को चुरा लिया है, लेकिन उस टाइम नहीं मारा क्योंकि जरूरत था नहीं वेदों का, जरूरत तो बाद में जब सृष्टि प्रारंभ होगा तब जरूरत होगा वेद का ब्रह्मा को प्रदान करने, तब तक भले बिचारा अपने पास रखे 432 करोड़ साल, वो समझ रहा था मेरे पास वेद है, मेरे पास वेद है, अभी जैसे सृष्टि होगा दोबारा तो मैं अपना कार्य भोगने चालू करूंगा उन वेदों से आइडिया ले लेकर के, लेकिन तब तक भगवान ने उनको मार दिया प्रत्याहरद हरि और वेदांत वेद से अहरद हरि हयग्रीवम वेद से स, तो उन वेद ब्रह्मा को उन्होंने प्रदान किया। तो इस प्रकार ये 57 या 58 श्लोक में कहते हैं कि उसी भगवान जो लीला से मत्स्य बने हुए विष्णु के प्रसाद से इसी कल्प में है ना, इसी जो मनमंत्र में वैवस्वत मनु है वो वैवस्व मनु के रूप में उन सत्यव्रत महाराज को स्थापित किया। अब आगे 60वें श्लोक में भी उनका भी परपट नहीं है, उनमें लिखा गया कि अवतारम हरे हरियोर अयम कृतियत अनुभम नरम, जो व्यक्ति भगवान मत्स्य और उनके जो भक्त है महाराज सत्यवत, तो उन सत्यवत के बीच में जो संवाद हुआ और या ये जो लीलाएं हुई भगवान की, इन लीलाओं का जो कीर्तन करेगा तो उन कीर्तन करने का फल कहते हैं कि संकल्पा तस्य सिद्ध्यन्ति, वो जो कोई भी संकल्प रख करके इन कथा का श्रवण करते उनका संकल्प सिद्ध होता है। अगर नरीमाइंड पॉइंट में आपको फ्लैट चाहिए, ये संकल्प लेकर के भी कथा सुनेंगे फ्लैट हो जाएगा। हाँ, इसका अर्थ ये है विश्वास के साथ अगर भजन करेंगे और मनु महाराज का संकल्प है अगले मनमंत्र में हमको बनना है, भगवान और एक अवतार ले सकते हैं, भगवान का अवतार मेरे को लेने में दिक्कत नहीं है। वो ले करके मनु महाराज के रूप में आपको बिठा देंगे। कोई भी संकल्प, संकल्पात तस्य सिद्ध्यन्ति, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति उनके संकल्प को ये पूरा करने वाली कथा है अगर ठीक से श्रवण करेंगे। सयाति परमाम गति, और दूसरी बात ये है कि ये नहीं उनके बाद में भटक जाएगा, वो कहां पर भी है और मनु महाराज हो गए लेकिन वो अंत में परम गति को भी प्राप्त करेगा, अर्थात भगवान के चरणारविंद को भी साथ में प्राप्त कर देगा। तो देवताओं के वरदान और भगवान के वरदान में अंतर है। वरदान तो दे रहे सुखदेव गोस्वामी पद कहते हैं, लेकिन वरदान के साथ साथ उन भोग में भी लिप्त भगवान होने नहीं देते, उनको निकाल देते हैं। तो इसकी सिद्धि के लिए एक सुंदर कथा है, वो कथा मैं कहना चाहता था लेकिन उसी में रह गया। एक बहुत सुंदर कथा दिया है उनके विषय में, वो मोटे रूप में यही कथा है, नहीं तो पूरे इतना श्लोकों के रूप में दिया है, पूरा श्लोकों के रूप में दिया है। ये कहते हैं अष्टम स्कंद के अंत में जो ये 60वें श्लोक में बताया गया, अवतारम हरियोर अयम कृतियत अनुभम नरम, किसी को विश्वास नहीं हो कि उनके सारे पाप से वो मुक्त तो हो जाएगा सब कुछ, तो उनके लिए एक उदाहरण देकर के हमारे आचार्य रखे हैं, और तो प्रमाण करने के लिए प्रूफ, जिनको विश्वास दिलाने के लिए कि सुनिश्चित व्यक्ति के सारे पाप कर्म कट जाते हैं भगवान की कथा श्रवण मात्र से। तो इसलिए मंसीधर जी एक पूरी कथा को रखे हैं। तो उन कथा को तो हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कल कोई लेते हैं क्लास को तो उनके लिए छोड़ते हैं ये कथा को। तो ये 61वें श्लोक में भी भगवान का संक्षिप्त में पूर्ण लीला को वर्णन करता हुआ ये श्लोक है, इसे कोई लेगा तो उनके लिए अच्छा है ये बताने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो समय तो पहले से ओवर हो गया है। नंदराज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की। लेकिन कल अगर कोई क्लास लेगा तो ये कथा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कथा है।